चरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः. ओ किंग परीक्षित, द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड रामचंद्र हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय ग्रेट सेंटली पर्सन्स हु हैव सीन द ट्रूथ. बिकॉज यू हैव हर्ड अगेन एंड अगेन अबाउट लॉर्ड रामचंद्र द हस्बैंड ऑफ द मदर सीता, आई शैल डिस्क्राइब दीज एक्टिविटीज ओनली इन ब्रीफ. प्लीज लिसन. तस्य अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः. तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के अचंत जो लीलाएं हैं, अद्भुत अनंत लीलाएं हैं, इसको ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने वर्णन किया है. और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान की लीलाओं को हमें सुनना है तो उसे तत्वदर्शियों के परंपरा में आए हुए जो वर्णन है उसको सुनना है, ना कि लोक कथा और मनोरंजन के हेतु कोई अगर राम कथा कह रहा है. उसे सुनने में भले थोड़ा मनोरंजन हो, पर हृदय का, अंतकरण की शुद्धि, जो आध्यात्म जीवन का उद्देश्य है, वो नहीं होगा. तत्वदर्शी कौन है? वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जो भगवान को पूर्ण रूप से तत्वतः जानता है, तत्वतः जानता है, यानी भगवान की शक्ति, संपूर्ण ब्रह्म किस तरह से मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, किस कण कण में विराजमान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, वही भगवान कैसे हरेक के जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है. उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर. और वही भगवान गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, साथ ही साथ अपने धाम में, वैकुंठ धाम में शाश्वत निवास करते हैं. ये तत्वतः जो जान जाएगा ऐसा व्यक्ति वर्णन कर सकता है. और यह तत्वतः जानने का एक ही तरीका है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तत्वदर्शी से सुनना, और तत्वदर्शी से जब सुनेंगे भगवान जो परम तत्व हैं, परम सत्य हैं, तो क्या होगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः. तत्वतः तभी जानेंगे जो भगवान की भक्ति, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु को. जब भगवान के प्रति प्रेमी भक्तों के हृदय से सुनेंगे तब हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी और तब हम तत्वतः जानेंगे भगवान को. मैं आपको केवल दो कथा, जो लोक कथा है, रामायण मतलब वाल्मीकि को अगर रखते हुए, वाल्मीकि जी को न रखते हुए अगर हम कहेंगे तो हम सिद्धांत के विरुद्ध जाएंगे. एक कॉरपोरेट में बहुत प्रचलित एक कथा है राम कथा, और दूसरा और एक लोक कथा है जो वर्णन नहीं है वाल्मीकि पर सिद्धांत में संबद्ध है. लोग अगर अपना कथा कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, अगर राम कथा करके कहेंगे, रामायण इन डेली लाइफ, और उसमें अपना मसाला डाल दिया तो लोगों को लगे हाँ रामायण सुना हमने. अगर मैं घर में एक साबुन बनाता हूं और गोदरेज का या टाटा का पैकेट लेके उसमें घुसा के देता हूं तो मुझे आप क्या कहोगे, क्या कहोगे तुम? का है प्रभु, मैं खुद का साबुन बनाया घर के पिछवाड़े में मिट्टी का उधर उधर लेके, और मैंने टाटा का या गोदरेज का फर्स्ट क्लास साबुन का पैकेट निकाला और उसमें घुसा दिया और तुमको उसी पैसे में दे दिया, टाटा का साबुन बोलोगे उसको? तो मैं कैसा व्यक्ति हूं? ठग है ना, चोर है ये. लिया मैंने अपना घर का साबुन और लगाया, क्यों? क्योंकि टाटा बहुत प्रसिद्ध है ना, गोदरेज का साबुन बड़ा प्रसिद्ध है, इसी तरह से मेरी मन की बातें, मनगढ़ंत बातें अगर मैं रामायण के नाम पे और उसमें घुसा के बोलता हूं, ये दिस इज फूल्स एंड रैस्कल्स, प्रभुपाद कहते हैं अवजानंति माम मूढ़ा, तो मैं दो कथा बोलता हूं। एक कथा बहुत ही प्रेरणादायक है पर एकदम गड़बड़ी है। कैसे बोलते वो लोग? तो एक बार वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा और हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखा। कदली वन में केले के पत्ते, सात पत्ते में सात कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये सात कांड है। तो उन्होंने सात कांड सात केले के पत्ते पे लिखा और जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के लिखे हुए केले के पत्ते में लिखे हुए रामायण को पढ़ा तो उनके वो रोने लगे। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या इतना सुंदर है? बोला, हाँ इसलिए रो रहे हो? बोले, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूं। फिर क्यों रो रहे हो? बोले, आपका रामायण कोई पढ़ेगा तो मेरा रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं और इसलिए मैं रो रहा हूं। तो हनुमान जी को इतना बुरा लगा, उन्होंने केले के पत्ते में लिखे वो सब फाड़ के नदी में बहा दिया और बोले, अब केवल तुम्हारा ही रामायण पढ़ेंगे। और ये व्यक्ति निष्कर्ष क्या निकालता है कि दो प्रकार के लोग ग्रंथ लिखते हैं, एक अपना यश फैलाने के लिए और दूसरा अपने आनंद के लिए। तो भाइयों और बहनों, ग्रंथ लिखना, कुछ लिखना है तो प्रेम से लिखो, नाम के लिए मत लिखो। बहुत अच्छा है ना, अमेजिंग लर्निंग, बट 100% डैबलिंग विथ द डिवाइन। यानी तुमने हनुमान जी का गुणगान कर दिया अपने पॉइंट बनाने में, पर वाल्मीकि जी को तुमने विलन बना दिया, खलनायक बना दिया कि वाल्मीकि जी की अपने लिए लिखे, जो सिद्धांत को नहीं जानता। धीरे धीरे वाल्मीकि के प्रति हमारे सम्मान चला जाएगा कि वो अपने यश के लिए उन्होंने लिखा ताकि उनको अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड। जबकि शुरुआत होता है रामायण के, शुरुआत में वाल्मीकि जी खुद लिखते हैं कब लिखे और क्यों लिखे। रामायण कब लिखा किसी को मालूम है? रामायण होने से पहले, राम के अवतार के पहले लिखे, राम के अवतार के दौरान लिखे कि राम के अवतार के बाद लिखे? राम के अवतार के पहले, नंदगोपाल जी कहते हैं, मतलब उनको ऐसा दृष्टि हुआ क्या क्या होने वाला, पूरा लिख दिया और राम जी एग्जैक्टली उसके अनुसार स्क्रिप्ट दिया था, आके एक्टिंग की कि राम कथा के बाद लिखे। कितने लोग कहते कि पहले लिखे, कितने लोग कहते हैं कि रामायण होने के बाद लिखा। डेमोक्रेसी कंट्री है भाई, हाथ तो उठाओ, वोट करना जरूरी है। अरे वोट तो दो। कितने लोग कहते हैं कि दौरान लिखे, कब लिखे? मैं बताता हूं, वाल्मीकि जी खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब रामचंद्र जी ने माता सीता को वापस आने के बाद, लंका से वापस आने के बाद, पट्टाभिषेक होने के बाद, सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था। सीता जी उस समय गर्भवती थी। सीता के लव और कुश दो पुत्र हुए। वो पुत्र बड़े होकर ऐसे हो गए थे, 10-11 साल के हो गए थे, छठी सातवीं में थे शायद, 10-11 साल के हो चुके थे उस समय लिखा। और लिखने के बाद सबसे पहले विद्यार्थी जिनको रामायण उन्होंने पढ़ाया वो लव कुश थे। और लव कुश ने जाकर पहली बार प्रभु रामचंद्र जी के सामने उस दरबार में बैठकर राम जी सुन रहे थे। राम जी यहां बैठे हुए समझ लीजिए आसन पे, और वहां बैठे हैं दरबार में, और वहां आके लव कुश बैठ के सुना रहे हैं। सब लोग पीछे मुड़ गए, प्रभु रामचंद्र जी पीछे सामने बैठे थे, और जैसे लव कुश आए सबके सब पीछे मुड़ के, समझ लीजिए प्रभुपाद जी बैठे वहां, वो सब मुड़ के उस तरफ मुड़ गए। सबसे पहले राम कथा लव और कुश ने पब्लिक में सुनाया, लिखे वाल्मीकि ने, और रामचंद्र जी भी सुन रहे थे, रामचंद्र जी भी सुन रहे थे, और राम स्तब्ध रह गए रामचंद्र जी। राम कथा राम भी जब सुनते हैं वो भी स्तब्ध हो जाते हैं। धीरे से उन्होंने अपने जो पादुका है, जो हीरों का बना हुआ, उस पादुका को धीरे से निकाला, धोती उठाए और टक 22 फुट, ऐसा 22 कदम था, ऊपर बैठे हुए थे या आसन पे, वहां से टक 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 धीरे से आए, क्योंकि आवाज राम कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, राम जी भी नीचे उतर के आए और बीच में बैठ गए सबके बीच में, और राम कथा इतना मग्न हो रहा था कि सुनते सुनते लोग, जब कुछ ऐसा प्रसंग आता था तो लोग रोने लगते, सब रोने लगते थे, और कभी कभी कुछ हास्य प्रसंग आता था, शूर्पणखा का नाक काटना, तो फाड़ करके बगल वाले को मारते थे, क्या क्या काट, इस तरह से किसी ने राम को भी फाड़ करके मारा, उनको ये भी नहीं मालूम और राम भी भूल गए। ये कथा है पर ये सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, कथा नहीं है, ये सत्य है कि वाल्मीकि ने जब ग्रंथ की रचना करने के बाद सबसे पहले लवकुश को सुनाया, वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, और उन्होंने जाके पहली बार जब अंतिम ये कर रहे थे यज्ञ, उसमें वहां सुनाया। अच्छा ये कब हुआ, अब कैसे लिखे वाल्मीकि, पहले 4 अध्याय वाल्मीकि रामायण पढ़ो आप पहले, उसके बाद उसमें से निकालकर कंब जी ने कंब रामायण लिखा दक्षिण भारत में, तुलसीदास जी ने तुलसी रामायण लिखा, तुलसी रामचरितमानस, पर मूल है वाल्मीकि रामायण। उसके विरुद्ध अगर कोई जाता है, उस सिद्धांत के विरुद्ध जाता है, तो निश्चित रूप से वो जैसा एक डाल अगर पेड़ से तोड़ दे तो सूख जाता है, इस तरह से वो नष्ट हो जाता है। राम कथा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम कथा रहेगा, पर दूसरे जो मिश्रित कथा है वो सब नष्ट होके सूख जाएंगे। तो वाल्मीकि जी एक दिन बैठे हुए थे और एकाएक सुबह सुबह, अभी मतलब स्नान के लिए जाने वाले हैं, सुबह सुबह नारद जी आ गए। पहला आश्चर्य, साधारणतः शिष्य गुरु के पास जाता है, अब गुरु जी आ गए शिष्य के पास, तो आ गए, और ये पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य, जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को आसन पर बैठाकर वाल्मीकि ने ये नहीं पूछा कि कहां से आ रहे हो, कैसा ट्रैवलिंग में, थोड़ा आरएसी में था कि रिजर्वेशन मिला, कि ये उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, ऐसे कोई महान आत्मा आया है तो तुरंत उसका लाभ लेना चाहिए, तुरंत उसको प्रश्न पूछ लिए। आज जहां मैं आपको बात, आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, आज के दिन इस पूरे धरातल पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो सारे सद्गुणों से संपन्न है, जो पुरुष में उत्तम है, पुरुषोत्तम, ऐसा कौन है मुझे बताइए। पहले अध्याय में नारद जी ने 100 श्लोकों में संपूर्ण रामायण का सार सुना दिया वाल्मीकि को, उसको कहते हैं बाल रामायण। पहला अध्याय बता दिए और बता के नारद जी चले गए। तत्पश्चात वाल्मीकि जी तैयार हुए, अपने शिष्य भारद्वाज को लेकर स्नान के लिए गए और वहां देख रहे थे, आह कितना सुंदर शीतल सरोवर है, जो एकदम अकर्दमम शब्द उपयोग किया है वाल्मीकि जी ने, अकर्दमम मतलब कुछ भी वहां गंदी नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, ऊपर से देखो तो नीचे तक दिखता है, इतना पारदर्शक। कहते हैं एक अच्छे भक्त के, शुद्ध भक्त के हृदय के, मन के समान स्वच्छ और निर्मल है। तो वहां स्नान करने के लिए उतरे और जैसे स्नान कर रहे थे, क्रौंच पक्षी के 2, एक मादा और एक नर, ऐसे ही रमण करते हुए एक पक्षी ऐसे मादा पक्षी उड़ के जा रही है, उसके पीछे पीछे नर पक्षी भाग रहा है, आपस में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। और ऐसे साफ करने के लिए, एक डुबकी लगाने के लिए, ऐसा जब पानी को इस कर रहे थे इस तरह से, तो उन्होंने देखा बस दो हाथ दूर ये मादा पक्षी ऐसे उड़ रही है, उसके पीछे पीछे नर पक्षी भाग रहा। आह कितना सुंदर दृश्य। वाल्मीकि सोच रहे थे भगवान ने पार्शियलिटी नहीं किया है, सबके हृदय में प्रेम रखा है, एक चींटी के हृदय में भी रखा है, एक गाय के हृदय में भी रखा है, पशु पक्षियों के हर एक के हृदय में प्रेम रखा है। हा द लॉर्ड इज इम्पार्शियल सोच रहे थे। और एकाएक एक तीर आया और मादा को उस नर पक्षी को भेद के पूरा खून से लथपथ हो गया और वहीं गिर गया। और वो मादा पक्षी चिल्ला रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है। या कोई यहां कोई ऐसा नहीं है जो इसे मुझे बचा सके इस प्रसंग से। और जब वो विलाप कर रही थी वो मादा पक्षी, वाल्मीकि जी इस अपने पति के विरह में जो विलाप कर रही थी उसके हृदय को समझकर क्रोधित होकर जो भी व्यक्ति ने उसे मारा है उसे शाप दिया। उस शोक में शोकग्रस्त होकर उस मादा पक्षी की दर्द को समझकर पीड़ा को समझकर उन्होंने एक शाप दे दिया। और जब शाप दिया तो बोले अरे भारद्वाज तुमने सुना, मैं शोक से बोला हुआ ये शब्द श्लोक बन गया, कितना संबद्ध है ये, चार चार पद हैं, चार पद का एक श्लोक मैंने बोला जिसमें चार पद है और हर एक पद में आठ आठ अक्षर हैं। मैं तो ऐसे ही शोकग्रस्त होकर बोला, इसमें से इतना सुंदर श्लोक कैसा निकला। और वाल्मीकि जी के मन में वो श्लोक बार बार क्या बोलते हैं घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे घर के सामने एक ऐसा दीवार के ऊपर फिल्म दिखाते थे फ्री में, उस समय बड़ा बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था, ऐसा वो कांटा रखते थे घूमता था ऐसा। तो एक घंटे पहले पिक्चर शुरू होने के एक घंटे पहले वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड के बड़ा वाला भोंगा ऐसा रखते थे, सबको पता चले कि पिक्चर शुरू होने वाले सब आते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड अटक गया, मालूम है कभी कभी अटक जाता वो ग्रामोफोन। कदमों पे सिर को झुका बालमा तू बड़ा ओ है, बालमा तू बड़ा ओ है, बालमा तू बड़ा ओ, अटक गया वो बालमा तू बड़ा। तो मेरी मम्मी बहुत तंग आ गई, बोले जाके उसको बता अटक गया लगता है बोल। और मैं जाके देखा वो ताला मार के चाय पीने गया है। एक घंटे तक बालमा तू बड़ा, आज 45 साल के बाद भी मुझे याद है बालमा तू बड़ा। सुबह सुबह हम लोग जो सुनते हैं ना दिन भर घूमता रहता है, इसीलिए सुबह उठ के अच्छा श्लोक का जो सुनोगे सुबह सुबह दिन भर बालमा तू बड़ा। तो वाल्मीकि जी के सर में वाह कितना सुंदर श्लोक, कितना सुंदर श्लोक। श्री संप्रदाय के आचार्य कहते हैं उस श्लोक के अंदर संपूर्ण सात कांड का बीज था, पूरे वृक्ष का बीज उस श्लोक निकला था। फिर वापस आए, वापस आके अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं और साथ उधर से फिर से ब्रह्मा जी आ गए। इस बार एक आश्चर्य नारद जी आए, दूसरा आश्चर्य शोक से श्लोक निकला, अब तीसरा आश्चर्य ब्रह्मा जी खुद आ गए, साक्षात पूरी सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी आ गए। वाल्मीकि जी उठे, उनको चरणों में प्रणाम किया, आसन पे बैठाए, उनका पाद पूजा किया, तत्पश्चात पूछ रहे प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपका, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे व्यक्ति हमारे आश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी बोले वाल्मीकि तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक निकला है ये ऐसा ही नहीं, साक्षात सरस्वती जी ने प्रकट किया है और इसी श्लोक के आधार पर तुमने जो नारद जी से संपूर्ण रामायण सुना है उस रामायण को तुम अभी ग्रंथ के रूप में रचना करो। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं कैसे समझ पाऊंगा, अरे कौन से जंगल में कहां माता सीता के साथ प्रभु रामचंद्र जी का वार्तालाप हुआ, उन्होंने क्या कहा, रावण में लंका में क्या हुआ, इधर किसको क्या मालूम, मैं कैसे लिख पाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे हृदय में संपूर्ण रामायण इस तरह से प्रकट होगा, आंखों देखा हाल बोलते ना, ये जब भगवत कृपा होती है। और तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत लिखते वक्त, मैं बूढ़ा हूं, 90 साल से ऊपर हो चुका हूं, मेरी आंख दिख नहीं, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, पर कैसे मैं लिख रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम, ये साक्षात नित्यानंद प्रभु मुझसे लिखवा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत देव जब स्फुरित करते हैं तब बलराम जी जो हैं वो प्रेरित करते हैं, तब जाके हम लिख पाते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें मालूम है, तो नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य भागवत लिखने के लिए कहा। तो ये ग्रंथ दिव्य ग्रंथ है। तो पहले पूरे परिवार आ गए, पहले पुत्र आए नारद जी, उसके बाद माता आई सरस्वती, उसके बाद ब्रह्मा जी भी आ गए, पिताजी भी आ गए, और इस तरह से पूर्ण रूप से जैसे व्यास देव को भी भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया चत अपाश्रयम्, नारद जी की प्रेरणा से व्यास देव जी पूरा देखने लगे और लिखने लगे। गोविंद भाष्य भी ऐसे लिखते हैं, ये मेरा भाष्य नहीं है, गोविंद भाष्य है, हमारे आचार्य जो लिखे हैं ग्रंथों की रचना इस तरह से किया। कहने का मतलब ये है, तब उन्होंने 24,000 श्लोकों में 7 कांड में संपूर्ण रामायण की रचना की, और ब्रह्मा जी बोल के गए कि तुम जो भी लिखोगे वो परम सत्य होगा, और जब तक इस पूरे विश्व में हिमालय जैसा पहाड़ रहेगा, नदियां बहती रहेगी, समुद्र रहेगी, तब तक हे वाल्मीकि तुम्हारा रामायण प्रचलित रहेगा। और ये मूर्ख कहता है कि वाल्मीकि अपने यश के लिए लिखे, वाल्मीकि ने कभी दूसरा ग्रंथ नहीं, पहले नहीं लिखे थे, दूसरे नहीं लिखे, एक ही ग्रंथ लिखे जब वो प्रेरित हुए, दिव्य प्रेरणा मिली, और उनकी आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से। तो पॉइंट बड़ा अच्छा है कि लिखते वक्त अपने अपने अहंकार को ये करने के लिए मत करो, आनंद के लिए लिखो, प्रेम से लिखो, पर क्यों जबरदस्ती तुम रामायण के कंधे पे रख के बंदूक मार रहे हो। अब और एक कथा मैं आपको सुनाता हूं जो बहुत प्रचलित है, लोक कथा है, पर सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। कभी कभी प्रवचन करता अगर सुबह सुबह कर रहे हैं, लोग फास्टिंग कर रहे हैं, संभावना है कोई सो सकता है, होता है ना, है कि नहीं, आवाज नहीं आ रहा। कभी कभी लोग थोड़ा ऐसा कथा में थोड़ा एक इस तरह से, पर सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। जो मुझे बहुत प्रिय, मेरे हृदय को स्पर्श किया, वो एक कथा कह के मैं समाप्त कर दूंगा। एक बार एक भक्त रामचंद्र जी के पास गया और रामचंद्र से पूछा, प्रभु मैं आपके सारे भक्तों का लिस्ट देखना चाहता हूं, कितने भक्त हैं आपके इस पूरे ब्रह्मांड में। तो रामचंद्र जी ने उसे दिखाया एक बड़ा डायरी, क्योंकि त्रेता युग से चला आ रहा है ना, कितने सारे राम भक्त हुए हैं। तो भक्त ने एक एक पन्ना खोला और देखा, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया, सबसे बड़ा भगवद गीता 850 किलोस एंड 8 फुट, कितना 12 फुट ऐसा कुछ तो था, ऐसा 4 लोग पकड़ के उठाना। तो इस बेचारे ने उसने पूरा देखा, सबसे बड़ा आश्चर्य था हनुमान जी का नाम ही नहीं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति कुल वरदूतम वायुजातम नमामि गोष्पति कृतवारीशम मसकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजना नंदनम देवम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि उल्लंघ्य सिंधोः सलिलम सलिलम यह शोकवह्निम् जनकात्मजायाः आदायते नैव ददाह लंकाम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेय मतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमूलवासनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसांतकम्। कितना गुणगान है। वाल्मीकि जी को स्मरण किए बिना, हनुमान को नमन किए बिना और प्रभु रामचंद्र जी को स्मरण किए बिना रामायण शुरू ही नहीं किया जा सकता। और मैं देख रहा हूं कि इस डायरी में रामायण हनुमान जी का नाम ही नहीं है। तो रामचंद्र जी बोले, अच्छा है, सब पहले ही पूछना था तुम्हें। और अपने धोती में से एक छोटा सा डायरी निकाले, एकदम छोटा डायरी, और बोले ये डायरी लो। और वो डायरी जब खोला, पहला नाम था राम भक्त हनुमान। तो ये भक्त थोड़ा विचलित हो गया, बोले प्रभु इतना बड़ा डायरी उसमें हनुमान का नाम नहीं, ये छोटा डायरी इसमें पहला नाम हनुमान का गिने चुने। अब बताइए इस डायरी में, बड़े डायरी में और छोटे डायरी में जो राम भक्तों का नाम लिखा है, दोनों में अंतर क्या है? तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, सुन भक्त, इस बड़े डायरी में उन महान भक्तों के नाम है, रामचंद्र जी के भक्तों का, मेरे भक्तों का नाम है, जो सतत 24 घंटे मेरा स्मरण करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम कीर्तनीय सदा हरि, जो 24 घंटे मेरा नाम स्मरण करते हैं। अच्छा, तो इस डायरी में क्या है छोटे डायरी में? बोले छोटे डायरी में उन महान भक्तों का नाम है जिसका स्मरण 24 घंटे मैं करता हूं। कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। ये आलिंगन प्रभु रामचंद्र जी ने गिने चुने लोगों को दिया है, भरत जी को दिया है, सीता जी को जरूर दिया होगा और हनुमान जी को दिया है। कब? जब वो सीता का खबर ले आए, शरीर छोड़ने वाले थे, प्राण त्याग करने वाले थे सीता जी के, किसी प्रकार के कोई किसी प्रकार का खबर नहीं मिला था। और तब जब हनुमान जी आए और बोले मिली सीता, इतने खुश हो गए। मैं वनवासी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है कुछ देने के लिए, कुछ भी, कुछ आभूषण भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूं हनुमान, आलिंगन दे सकता हूं। कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, केवल 40 नहीं, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। तो ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, भले रामायण वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं है, पर कितने हृदय को स्पर्श करता है और शास्त्र के मर्म को, शास्त्र के सिद्धांत को, निचोड़ को हृदय में प्रकट करता है। रामचंद्र के प्रति प्रेम, हनुमान जी के प्रति कितना प्रेम उत्पन्न होता है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ये। भले दक्षता के साथ ये कथा, और क्यों सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? नवे स्कंद में, यही नवे स्कंद में दुर्वास मुनि जब अम्बरीश महाराज को अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, उसके पीछे सुदर्शन लग जाता है और वो जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान कहते हैं मूर्ख दुर्वास सुन ले ये सत्य क्या है, परम सत्य मैं तुझे बता रहा हूं। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तु अहम, मद अन्य ते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, शुद्ध भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं क्योंकि मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, उनके अलावा वो मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके अलावा और किसी को नहीं जानता। हनुमान जी तो प्रदर्शित किए, छाती फाड़ के दिखाए सीताराम लक्ष्मण है। अगर प्रभु रामचंद्र जी अपने छाती फाड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां हनुमान जी बैठे रहेंगे, निश्चित रूप से वहां हनुमान जी का निवास है। इतने प्रिय हैं, हमेशा स्मरण करते हैं। नरसिंहदेव अगर अपना हृदय फाड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद अगर हृदय फाड़ेंगे तो वहां नरसिंहदेव बैठे हुए हैं।
ये आपस का प्रेम है, यही भागवत का सार है, यही सिद्धांत भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु का है। ये प्रेम जब उनके अलावा शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, तो गोविंद भी कहेंगे शून्यायितम जगत सर्वम मद भक्त विरहेन में, मेरे लिए पूरा वैकुंठ भी सूना सूना लगता है अगर मेरे भक्त नहीं है और उनको ढूंढते हुए मैं यहां आ जाता हूं। तो ये रामकथा का सार है। यहां कहकर मैं समाप्त कर दूंगा, गाड़ी खड़ा हुआ है। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामचंद्र श्री रामनवमी महामहोत्सव की हिताय, घोर प्रेमानंदे। वासुदेव घोष कहते हैं कि केहो बोले पूरवे रावण वधिला, गोलोकेरो वैभव लीला प्रकाश करीला, श्री राधार भावे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। तो वही रामचंद्र जी का दिया हुआ ये प्रेम आज कलयुग में हरिनाम संकीर्तन अगर करेंगे तो डायरेक्टली हम रामलीला में प्रवेश कर सकते हैं और वो राम राज्य का निर्माण हो जाएगा, तब हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और आप सब सौभाग्यशाली हैं जो कुछ लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, मदन मोहन जी संबंध जोड़ने वाले, और यहाँ अभिधेय और प्रयोजन सबके सब सब विग्रह यहाँ है। सही में वृंदावन परंपरा में गुरु की कृपा से इतना सुंदर एक साधु, तो इसका आस्वादन करना है और बांटना है, ये दो हमारा काम है। हरे कृष्ण। मैं माफी चाहता हूँ आदिकेश्वर प्रभु, दादागिरी करके मैं आ गया इधर, बार्जिंग इन टू द प्लेस, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण।
जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवा।